ओम शांति। संबंधों की सीरीज में आज का टॉपिक है संबंधों में सम्मान। कैसे हम संबंधों में सम्मान प्राप्त करें और कैसे सबको सम्मान देते चले। आज दुनिया के अंदर हर व्यक्ति संबंधों के बीच घिरा है। बचपन से लेकर पूरा जीवन भर वो रिश्तों के बीच ही घिरा रहता है। कहीं उसे संबंधों में सुख मिलता है तो कहीं दुख, कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो कहीं उसकी भावनाओं की कदर होती है। कहीं उसे स्नेह, प्यार, सम्मान मिलता है तो कहीं उसके जीवन के अंदर दुख, दर्द, धोखा ये सब मिलता है, दुख की फीलिंग आती है। लेकिन जीवन में रहते हुए कैसे हम हमेशा सम्मान प्राप्त करें और उसे सबको सम्मान देते चलें, उसको देखना है हमें आज कि कैसे हम सबको सम्मान देते हुए चलें इस जीवन के अंदर। कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है तो हर कोई चाहता है कि हर कोई व्यक्ति हमसे प्यार से बात करे, उसका जो व्यवहार हो हमारे साथ वो स्नेहपूर्ण हो, है ना। हर किसी के मन में यही इच्छा होती है कि किसी की कोई बात हमें हर्ट ना करे, उससे हमें सुख ही मिले। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने कोई हम ऐसी बात किसी को बोल देते हैं जो किसी को हर्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों से हम कैसे बचे और कैसे अपने जीवन के अंदर हर कोई हमसे संतुष्ट रहे, खुश रहे, सबसे प्यार से बात करें और कैसे हमारे जीवन के अंदर भी संपूर्ण सुख हो, उसको हम देखेंगे। एक किस्सा बताते हैं कि एक बार एक भिंडी को प्यार से धुलाई करके वो काट रही थी, धुलाई करके साफ करके वो काट रही थी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट के वो रख रही थी सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि एक भिंडी अचानक उसमें ऊपरी हिस्से में उसमें छेद आया, तो मुझे लगा कि शायद वो भिंडी खराब हो, उसको फेंक देगी। लेकिन उसने उस भिंडी के ऊपर का ऊपरी हिस्सा जितना खराब था वो काटा और फिर उसको देखने लगी तो थोड़ा हिस्सा और खराब दिखाई दिया, तो उसने उस हिस्से को भी काट दिया। और फिर बाद में देखा तो वो भिंडी जो थी वो बिल्कुल साफ थी, तो उसने उस भिंडी को काट के सब्जी बनाने वाली भिंडी के अंदर रख दिया, है ना। तो उसे व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे हम 5 पैसे या 10 रुपए की चीज को भी कितना प्यार से रखते हैं, है ना। उसके अंदर जो उसका जो सड़ा हुआ हिस्सा था उसे हमने केवल काट दिया, बाकी जो साफ हिस्सा होता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जीवन के अंदर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर हम कोई एक कमी या कोई कमजोरी या कोई ऐसी बात देख लेते हैं तो हम उस पूरे व्यक्ति को ही अपने जीवन से काट के फेंक देते हैं बाहर। लेकिन हम उस परिस्थिति में भी हमारे मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति प्रेम की भावना, स्नेह की भावना और सम्मान की भावना रहे, ये ज्ञानी आत्मा के लक्षण है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी हर आत्मा के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, सम्मान की दृष्टियों, समान दृष्टियों, जब हमारा ऐसा व्यवहार होता है तो ही हमारे रिश्तों में, आपसी संबंध में प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावनाएं जागृत होती हैं। दुनिया के अंदर आज हम देखते हैं कि रिश्ते क्यों बिखरते जा रहे हैं, क्योंकि कोई रिश्तों की कदर ही नहीं करता। संबंधों के बीच जो प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, सम्मान, सत्कार होना चाहिए वो कहीं कम होता जा रहा है। इसलिए आज हमारे जो रिश्ते हैं वो बिखरते जा रहे हैं। कहते हैं कि जो ताला होता है ना उसको हथौड़े से तोड़ेंगे, है ना, तो वो एक बार में ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको प्यार की चाबी से खोलते हैं तो वो बार बार क्या काम आता है। लेकिन इसी तरह हमें जीवन में, अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, तो उसको प्रेम की चाबी से खोलें। स्नेह, सम्मान, इसकी चाबी से हम खोलते हैं तो व्यक्ति वो व्यक्ति हमारे बार बार काम आता है। नहीं तो हम सोचते हैं किसी एक छोटी सी कमी देखी उसको अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि परमात्मा ने भी कैसे हमें स्वीकार किया है। कभी भगवान ने हमारी कमियों का वर्णन नहीं किया, लेकिन हमेशा हमारी विशेषताओं का ही वर्णन किया। विशेषता देखते देखते वो विशेषताएं हमारे अंदर भी आने लगती हैं। जैसे कहते हैं कि सच्चा प्यार जो होता है वो पत्थर को भी पानी कर देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, भले किसी के कड़े संस्कार हैं, लेकिन अगर हमारी शुभ भावनाएं, शिक्षा स्वरूप का भी हमारा स्वरूप होता है, तो बाबा कहते हैं कि उसको भी आपके अंदर शिक्षा भी देनी है तो रहम के साथ शिक्षा दो। क्योंकि अगर शिक्षा देंगे खाली तो भले ही वो आत्मा परिवर्तन ना हो, लेकिन जब हमारा शिक्षा के साथ रहम का स्वरूप होता है तो वो कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देती है। जैसे भगवान कहते किसी से कोई गलती हो जाती है तो किसी को डांटना नहीं कभी भी। हर आत्मा के प्रति रहम का भाव हो, रहम की दृष्टि हो, क्योंकि भगवान कितनी गलतियां हम करते हैं कभी किसी को नहीं डांटता, कभी उसकी दृष्टि किसी आत्मा के प्रति नहीं बदलती। तो बाबा कहते तुम भी तो भगवान के बच्चे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि क्यों बदल जाती है किसी के एक भी अवगुण को देखकर। इसीलिए हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना सदा रहे, तो ही हम उसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमारे दिल में किसी के प्रति नेगेटिव भावनाएं होंगी तो भले ही हम उसको कितनी भी शिक्षाएं दे उस आत्मा को, लेकिन उसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भावनाएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और हमेशा पॉजिटिव दृष्टि रखो, चाहे कोई आत्मा कैसी भी है, लेकिन फिर भी उस आत्मा के प्रति आपका स्वरूप ना बदले। कहते हैं ना कि रिश्ते जो होते हैं अंकुरित होते हैं वो प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं युद्ध से। जब हमारे जीवन में रिश्तों में युद्ध चलता है तो वो रिश्ते फिर चलते नहीं हैं। आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, क्योंकि हर आत्मा जिसके भी संपर्क में आती है, आज मनुष्य के जीवन के अंदर गुण ही नहीं है तो वो किसी भी आत्मा की छोटी से छोटी कमियों को, छोटी से छोटी गलतियों को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी नेगेटिव भावनाएं हो जाती हैं। लेकिन बाबा कहते कि हर आत्मा के प्रति स्नेह की दृष्टि हो आपके, तभी उस आत्मा के अंदर वो परिवर्तन आ सकता है। जब भी हम किसी में, परिवार में, कुटुंब में या किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमें हमेशा यही ख्याल रखना चाहिए कि जिनके भी हम संपर्क में आ रहे हैं वो आत्माएं कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है ना, कोई लोहे के या माटी के पुतले नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी दिल है। और हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम, आदर, यही सब गुण चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बड़ों के साथ विनयपूर्वक व्यवहार, बराबरी वालों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार और छोटों के साथ हमेशा सहानुभूति और रहम की भावनाएं हो, तो वो हमारा जादुई असर करती है। कहते हैं रिश्ते बरकरार करने की केवल एक ही शर्त है, भावनाएं देखो, संभावनाएं नहीं। ना क्योंकि हम भावनाएं तो छोड़ देते हैं और बाकी सब कुछ देखने लगते हैं। इसीलिए फिर वो रिश्ते नहीं चल पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने आके हमेशा हमें ऊंची दृष्टि से ही देखा है ना, हमारे अंदर की विशेषताओं को ही देखा। कभी उसने हमें आके हमारी कमियों को नहीं गिनाया, लेकिन हमेशा हमारी विशेषताओं को ही सामने रखते हुए हमारी कमियों को अपने आप रियलाइज कराया। जैसे कुम्हार होता है ना, वो ऊपर से थाप भी लगाता रहता है और नीचे से टेक भी लगा के रखता है ना, ऐसे भगवान हमें हमारी विशेषताओं को भी बताता है और कमियां भी, जिससे हमारे अंदर जो हमारी कमियां होती है उसमें आसानी से परिवर्तन आ जाता है, नहीं तो हम शायद कोई परिवर्तन ही ना हो। कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर अगर कोई भी बात में हमारा टकराव होता है ना, तो वो क्योंकि आज हमारे जीवन के अंदर ज्ञान ही नहीं है। जब हम ज्ञान की रीति से हर आत्मा के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, हर आत्मा के प्रति हमारी स्नेह भरी दृष्टि होती है, तो ही हम किसी के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। नहीं तो हमको संबंधों में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल लगता है, हम सोचते हैं कि इस आत्मा के साथ तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों को लेके उनके संपर्क में आते हैं, तो ही हम उस आत्मा के साथ आगे चल सकते हैं। नहीं, बाबा ने हमें ज्ञान की समझ दी है ना, तो बाबा कहते हैं ना कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। हर ड्रामा, इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, है ना। विशेषताएं देखो, हर आत्मा की विशेषताएं देखेंगे। गरिमा, अच्छा, गरिमा शरीर का नाम गरिमा बहन है, यूपी मेरठ से आए हैं और 12 साल से ज्ञान में हैं बाबा के। नहीं, शुरू से भक्ति बहुत करते थे। थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते होंगे तब से मंदिर जाना और पूजा पाठ करना, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और एक विशेष बात थी कि हमेशा शिव की भक्ति करते थे। हमारे घर परिवार में कोई किसी की भक्ति करता था, कोई किसी की। तो मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि बहनों को तो देवियों की भक्ति करनी चाहिए, तुम तो शिव की भक्ति करती हो। मेरे को, मुझे तो शिव ही अच्छे लगते हैं, मैं तो उन्हीं की भक्ति करती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे हम भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे। तो मैंने MCA कर लिया था, उसके बाद मेरा जो लौकिक भाई है वो ज्ञान में पहले आए। तो उनसे मैंने एक बार सुना था कि उन्होंने कहा कि एक दादी हैं, उनके तन में भगवान आते हैं, वो उन्होंने मेरे को लाइन बोली थी। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई देखने की कि मुझे भी देखना है कि कहाँ पे है। तो मेरठ सेंटर पे देवता दादी रहती है, कमल सुंदरी दादी जी। तो उन्होंने 8 मई को शरीर छोड़ा था, तो उनकी अरिष्टि थी। तो अरिष्टि होते ना, तेहरी, तेहरी, हाँ, तो तेहरी थी। तो उसमें प्रोग्राम रखा था, तो यहाँ से गुलजार दादी जी, रुकमणी दादी जी और सब भाई बहने उधर से आए हुए थे। तो हम उस प्रोग्राम में गए थे सबसे पहली बार। तो वहां पे हमने सबसे पहली बार गुलजार दादी को देखा था। और दादी बोल रही थी मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो हमें पता तो था नहीं बाबा कौन है, लेकिन फिर भी हम भी बोल रहे थे मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो फिर वहां पे गए तो पता चला कि वहाँ पे सेंटर पे प्रोग्राम होता है और 1 हफ्ते का कोर्स होता है, वो कोर्स करना होता है, उसके बाद फिर हम आगे ज्ञान में चलते हैं। तो फिर हम सेंटर पे गए, भाई के साथ ही गई मैं सेंटर पे। तो फिर वहाँ हमने कोर्स किया और पहले दिन गए तो वो भाई तो हमें मिले नहीं जो मैं कोर्स कराते। तो फिर भी हम, भाई तो मुरली पढ़ते थे तो हम मुरली पढ़ के आ गए। जिस दिन से पहले दिन से सेंटर पे गए तो मुरली पढ़ना हमारा पहले ही शुरू हो गया, मुरली सुन के आए। फिर 1-2 दिन बाद फिर हमारा कोर्स हुआ, तो 1 हफ्ते का कोर्स हुआ, हम डेली जाते थे पूरा हर चीज में। फिर हमने कोर्स किया और हम सब बातें बताई कि जैसे कि क्या नियम धारणाएं हैं, और कैसे परमात्मा। लेकिन हमारे मन में कभी ऐसा प्रश्न नहीं आया कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे भगवान थोड़ी आएगा। हर बात को एक्सेप्ट कर लेते थे सहज रीति से कि हाँ ठीक है ऐसा है। मतलब भावनाएं बहुत ज्यादा थी, कोई ऐसी नहीं थी कि हर बात में तर्क करें, लेकिन विश्वास कर लेते थे हर बात में। तो धीरे धीरे ऐसे ज्ञान में आते चले गए और तब से 12 साल हो गए। शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने मूली ना पढ़ी हो। और तब से ही फिर सारी नियम धारणाएं सब करते हैं। पहले भी हमारा ये था कि जब हम घर में रहते थे तो भक्ति पूजा पाठ किए बिना नाश्ता नहीं करते थे। और ज्ञान में भी 12-13 साल हो गए जब से आए हैं, तो शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने बिना मुरली पढ़े नाश्ता किया हो। कभी डेली मुरली पढ़ते हैं, भले ही जिस दिन पहले शाम की क्लास में जाते थे तो सुबह की मुरली नहीं होती थी, तो हमारे पास पहली मुरली रखी होती थी, हम वो पढ़ते थे फिर, लेकिन मुरली मिस नहीं करते थे कभी भी। शाम का योग भी और धारणाएं भी, खाने पीने की धारणा भी हमने सब पहले दिन से, जिस दिन से हमें बताया उस दिन से शुरू कर दिया। तीसरा ये दिन हुआ था हमारा कोर्स का, चल रहा था कोर्स, तो तभी हमें भाई ने बताया कि अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेले भगवान आते हैं। तो तीसरे दिन से फिर हमने शुरू कर दिया अमृत वेला भी। जो बातें हमें तब पता चली, जिस दिन हमारे कान में कोई बात पड़ गई तो फिर हमें फिर वो दोबारा नहीं सोचना पड़ता था, उसी दिन से वो धारणाएं शुरू हो जाती थी हमारी। जिस दिन से सुना बाहर का नहीं खाते, प्याज ये सब नहीं खाते, सब छोड़ दिया। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे ज्ञान में आ गए, सेवा भी करते थे, सेंटर पे भी जाते थे, डेली मुरली सुनते थे, अभी भी जाते हैं खैर सेंटर पे। तो परिवार में मेरी माता जी चलती हैं, लौकिक माता जी, और भाई चलता है ज्ञान में, पिताजी नहीं चलते। हाँ पहले तो वो बहुत मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, कहते थे अरे उधर जाएंगे फिर ये कहेंगे शादी नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन अभी तो इतना नहीं करते। हाँ उनको पता चल गया कि ये छोड़ने वाले नहीं है। भाई बड़े मुझसे, अभी पुरुषा तो बस अमृत वेला मुरली मेडिटेशन शाम का। खास जो मेरा ध्यान रहता है वो मेरे को लगता है कि साक्षी भाव और हर चीज के प्रभाव से मुक्त होने की जो स्थिति है, अशरीरी अवस्था है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। कि किसी भी आत्मा के हम संपर्क में आते हैं, भले कोई आत्मा कैसी भी है, किसी के स्वभाव संस्कार कैसे भी है, लेकिन उनका प्रभाव हम पे ना पड़े। हमें जो भगवान ने श्रीमद दी है उन बातों को हमें ध्यान में रखना है, भले ही कोई पुरुषार्थ करे या ना करे, कोई धारणाएं करे या ना करे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल के संतुष्ट हो जाता है, कोई बिना बोले संतुष्ट होता है। कोई किसी व्यक्ति को किसी बात को बोल दिया, कह दिया, तो उसमें वो संतुष्ट होता है, लेकिन कोई व्यक्ति को थोड़ी सी बात भी किसी को बोल देता है तो उसको अंदर हर्ट होती है, क्यों मैंने ऐसे बोल दिया, भगवान ने श्रीमत नहीं दी है ये। तो अपने आप को देखना है, पहले अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ संतुष्ट हो सकती हूँ, किस बात में मैं संतुष्ट हो सकती हूँ, मुझे क्या करना है, तो फिर उस अनुसार फिर पुरुषार्थ करते हैं। बाकी छोटी मोटी कमियां और गलतियां तो सबसे होती हैं ही, लेकिन धीरे 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 चल रहे हैं। क्योंकि हम जब ज्ञान में आए ना तो हमने हर बुद्धि एकदम हमारी क्लीन थी, तो किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क वाली और ये सब नहीं, हर बात को भावना से, विवेक से और समझ से, हर चीज से हम समझते थे हर चीज को। तो और शिव से तो शुरू से ही प्यार था, तो इसलिए भगवान से, और हमने पुरुषार्थ भी शुरू से ही करते थे, सारे नियम धारणाएं सब कुछ करते थे, तो वो हमें भगवान से जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, जो फीलिंग होती है, अनुभव होना चाहिए, वो हमें अनुभव होता था। और बाहर की कोई भी बातें हमें शुरू से ही ऐसा लगता था कि ये बाहर जो हो रहा है दुख की दुनिया है, इस दुनिया के अंदर कोई सुख नहीं है ना, और अच्छी नहीं लगती थी दुनिया की। हर आत्मा के अंदर विकार, कंपटीशन, हर बात में कोई किसी को किसी की कदर नहीं है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, तो वो सब दुनिया में अच्छी नहीं लगती थी। हम लगता था कि भगवान ऐसी दुनिया हो कहीं जहाँ सुख शांति से रह सके, ये ऐसी दुनिया में हम नहीं रह सकते कोई ऐसी दुनिया चाहिए जहां हम सुख शांति से रह सके। तो ज्ञान को जब सुनते थे तो वो बातें अच्छी लगती थी, क्योंकि हर कुछ पॉजिटिव था। हर आत्मा के अंदर जो संपर्क में आते थे, हमारी सेंटर की बहनें भी, स्नेहपूर्वक व्यवहार होता था, अच्छी अच्छी बातें सुनते थे जिसके भी संपर्क में आते थे। तो सबसे बाबा की बातें सुनने को मिलती हैं जो ज्ञान में होते उनसे, तो बहुत अच्छा लगता था। एक एक दिन में हम कभी मूल्यां भी होता था, कितनी मूल्यां हम लेके आते थे फोटो स्टेट करा के, चार चार पांच पांच छह छह सात सात मूल्यां एक दिन में पढ़ लेते थे। दो दो दिन में पूरी अव्यक्त वाणी की किताब पढ़ देते थे, इतना इंटरेस्ट आता था। क्योंकि कुछ था ही नहीं ना, बुद्धि खाली थी, तो लगता था कहीं से कुछ मिले। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, जिनसे उसको सबसे ज्यादा जानकारी मिल जाती है। किसी व्यक्ति से भी हम पूछेंगे तो कोई व्यक्ति कहाँ तक हमारे पास टाइम देगा अपना, लेकिन किताबों से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो सारी की सारी जब भी हम मधु बनाते थे, अव्यक्त वाणियां खरीदना लिटरेचर पे ही मिलते थे। कोई भी किताब, स्पार्क की किताब, अव्यक्त वाणियों की किताब सब खरीदते थे, सब पढ़ते थे बैठ के। और मैंने अभी भी अलमारी भर के रखी है पूरी किताबों से, पढ़ती रहती हूँ बीच बीच में। अभी जब इससे मोबाइल आ जाता है तो फिर वो किताबें थोड़ा छूट जाती हैं, लेकिन इसमें भी हमारा कोई वेस्ट नहीं चलता। हाँ, इसमें भी मूल्य, ज्ञान की बातें, कोई क्लास, ये सब चीजें रहती है। और मेडिटेशन की तरफ ज्यादा अटेंशन रहता है। लौकिक जॉब तो मैं नहीं करती हूँ, ऐसे मैंने 2005 में एमसी किया है, उसके बाद फिर 2007 में हम ज्ञान में आ गए, मई 2007 में, फिर तब से बाबा के बने। मैं घर से सेंटर पे जाती हूँ, थोड़ा घर में रहते हैं और सेंटर पे सेवा होती है, सेंटर पे जाते हैं बाकी। सेंटर से घर पे नहीं जाएंगे, सेंटर से सेंटर और सीधा परम धाम, ऊपर वाले घर में जाएंगे। वो लक्ष्य नहीं रखना, नहीं समझना तो जरूरी है, बिना समझे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन संबंधों में अगर दूरियां आती है तो हमें उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है और ज्ञान की धारणाएं नहीं है, तो हम किसी के भी संपर्क में आते ना तो खुद खुश रह सकते हैं और ना दूसरे हमसे खुश रह सकते हैं। जब हम जितनी हमारे जीवन के अंदर प्योरिटी है ना, हमारे जीवन के अंदर सत्यता होगी, हम भगवान की श्रीमत पे चलेंगे, उतना ही हम दूसरों को सुख दे सकते हैं, जितनी हमारी खुद की धारणाएं हैं। बाकी तो हम शिक्षाएं तो भले ही कितनी भी दें, किताबें भरी पड़ी हैं शिक्षाएं देने के लिए, तो लेकिन वो शिक्षाएं केवल भाषण की तरह है ना, उससे उस सामने वाली आत्मा के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो कोई व्यक्ति फिर हमसे कोई प्रेरणा नहीं ले सकता परिवर्तन के लिए, जब तक हमारे जीवन के अंदर वो नहीं है। इसलिए पहले खुद अपने जीवन के अंदर धारण करनी है, फिर दूसरों को हम शिक्षा देंगे तो उस पर फिर वो महसूस होती है उस सामने वाली आत्मा को। बाबा कहते हैं कठोर दिल वाली भी कैसी भी आत्मा हो तो वो भी परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन शिक्षा के साथ रहम दिल का स्वरूप हो। टकराव तो होता है, अपने आप को ही समझाते हैं, कहते बाबा ने हमें श्रीमत दिया तो हमें फिर डिस्टर्बेंस तो होता है, भले ही हमारे कहीं होता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस हो रहा है सामने वाली आत्मा के साथ। तो अपने आप को थोड़ा सा उससे किनारे करना है ना, अपनी स्थिति को चेक करना कि कहाँ मैं ज्ञान की धारणा में, इस चीज के लिए भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है और कौन से पॉइंट की मुझे इस चीज में यूज करने की जरूरत है, कैसे मैं अपनी भी सेफ्टी करूं और उस आत्मा का भले ही वो परिवर्तन हो या ना हो तब उस समय, लेकिन मैं कैसे अपनी सेफ्टी करूं तो मेरे पॉजिटिव संकल्प से उस आत्मा के अंदर अपने आप ही परिवर्तन आएगा। मुझे कोई उसको शिक्षा देकर उसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आत्मा आज अपने स्वभाव संस्कार के वश है। जो भी परिवर्तन होगा, जब तक उसके अंदर खुद रियलाइजेशन नहीं होती तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकती। इसलिए अपनी स्थिति को सेट करके रखना है। अपनी स्थिति सेट होगी तो शायद हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे, अगर खुद ही बीमार पड़ गए तो शायद नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है। और खुद का भी दिल अंदर खाता है कि भगवान ने हमें श्रीमत दी है और किस जन्म में जाके परिवर्तन करेंगे, यही तो समझ है, इस समय तो मुझे परिवर्तन करना है, भले ही थोड़ा इस टाइम पे लगेगा, सहन करना है, कुछ महसूस भी होगी बातें, लेकिन अगर भगवान की श्रीमत पे हैं तो वो महसूसता भी दिल को अंदर खाती नहीं है, वो महसूसता भी हमारी शक्ति बन जाती है ना, उससे हमें भगवान की क्योंकि मदद मिलती है और अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, भले ही कोई कुछ करे या नहीं करे, लेकिन मैं श्रीमत पे हूँ तो वो मेरी सेफ्टी का ओरा बन जाता है, जिसमें मैं आत्मा सुरक्षित रह सकती हूँ। ओम शांति।
Thank you.